सूरत निसा आयत नंबर 172, इसमें बताया जा रहा है कि पैगंबर जो थे वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे थे। तो ईसाइयों ने क्या किया, आपने पिछली आयत में पढ़ा कि उन्होंने गुलू किया कि एक अल्लाह के बंदे को, अल्लाह के रसूल को जो है बंदगी के मकाम से हटाकर क्या कहा कि खुदाई में उनको शामिल कर लिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैन यस्तनकिफल मसीहू अन यकून अब्दल लिल्लाही बलल मलाइकतुल मुकर्रबून, हरगिज जो है वो बायसे आर नहीं समझा मसीह ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कोई इस बात को नंगो आर नहीं समझा। लन के मानी जो है ये हरगिज नहीं के होते हैं, नहीं में ताकीद के मानी पैदा होते हैं। ये लफ्ज लन का फेल मजारे पे दाखिल होता है। यहाँ पे यस्तनकिफा इसका रूट है नून का फा, इसके मानी होते हैं किसी चीज को अपने लिए बायसे आर समझना। और नकफा के मानी होते हैं किसी चीज को अपने से दूर हटाना, जैसे अरबी जबान में अगर कोई रो रहा है और अपने रुखसार से जो है वो हाथ के साथ आंसू पहुंचता है तो भी ये नकफुन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो नकफुन के मानी क्या है कि आंसू बह रहे हैं आप पहुंच रहे हैं, तो क्या है कि दूर हटा रहे हैं ना, दूर हो जाना, दूर हटाना, इस तरह के ये लफ्ज जो है मानी देता है। तो यहां पर भी क्या है कि लैन यस्तनकिफल मसीहू, हरगिज जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल मसीह ने जो है वो दूर नहीं हुए, उन्होंने इस बात को जो है बायसे नंगो आर नहीं समझा। आप यूं भी कह सकती हैं कि वो इस बात से शर्माते नहीं हैं, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। किस बात से, अन यकूना अब्दन लिल्लाह, अब्दन लिल्लाह कि वो अल्लाह का एक बंदा हो, तो वो बंदगी में फखर महसूस करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वल्लल मलाइका तू, और ना ही फरिश्ते, और फरिश्ते भी कैसे, अल मुकर्रबून जो मुकर्रब है। इसके मानी ये हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जो है वो बाज लोगों ने फरिश्तों को भी खुदाई में शरीक ठहरा रखा है। बाज लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा कहते थे, अल्लाह का बंदा कहने की बजाय अल्लाह के साथ खुदाई में शरीक करते थे, और बाज लोग फरिश्तों को कौन खुदाई में शरीक करते थे, अहले मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी इस बात पर शर्मिंदा नहीं है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। ये अल्लाह यानी बंदा होना, इंसान होना इनके लिए शर्मिंदगी का जरिया नहीं है, बायस नहीं है, और ना ही फरिश्ते। और फरिश्ते भी कौन से, अल मुकर्रबून जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं। अब यहाँ पे ना वो जो उनका ईसाइयों का अकीदा था गुलू का, ये उसकी तरदीद की जा रही है कि ये सब के सब अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह की अताअत करने वाले थे, अंबिया भी, जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई है, और इसके साथ ही जो है वो फरिश्ते भी। और ये मिसाल देने का मकसद ये है कि फिर तुम किस बिना पर जो है वो अल्लाह की अलूहियत में शिर्क करते हो, अल्लाह को एक इलाह क्यों नहीं मानते, कभी इंसानों को जैसे पैगंबरों को अल्लाह की खुदाई में शामिल करते हो, जैसे यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह का बेटा कहते थे, ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, अहले मक्का जो थे वो मुशरिकीन को। फिर फरमाया वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, और जो कोई इनकार करे उसकी इबादत का, अल्लाह की इबादत का, कि जो कोई अल्लाह की बंदगी को आर समझे, इनकार करे, व यस्तकबिर और तकबुर करे। तकबुर करने का मतलब क्या होता है कि हक का इनकार करना, अपने आप को बड़ा समझना। तो जो ऐसा करेगा, फसा यहशुरुहुम इलैही जमीया, अल्लाह इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। अब यहाँ पे जो है वो फा पस सा आया है, यानी अनकरीब इकट्ठा करेगा, और हशर का लफ्ज है। हशर का लफ्ज जो है इसके मानी क्या है, ये सिर्फ जानदारों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है, मानी होते हैं लोगों को इनके ठिकाने से किसी एक तरफ ले जाना, عربی زبان میں بھی ہے کہ الحشر الجمع مع سوق، تو تجمع سوق اور باسا، اس میں تین معنی پائے جاتے ہیں کہ تجمع جمع کرنا، سوق ہانکنا، اور باسا جو ہے پھر ان کو اٹھا کھڑا کرنا. تو کبھی ایک معنی مراد ہوتا ہے، کبھی دو، اور کبھی تینوں معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ شرک کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود تو نہیں چاہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنایا جائے، لوگوں نے ان کو کہا نا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. فرشتوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اہل مکہ نے ان کو اللہ کی بیٹیوں میں الوہیت میں شامل کر لیا. تو کہا کہ جو شرک کرنے والے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان سب کو اکٹھا کر کے الیہ جمیعا، اللہ ان کو اپنی طرف پھر جمع کرے گا. تو جمع کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ حساب کتاب. تو یہاں پر جو ہے تردید کی جا رہی ہے، ایک طرف شرک کی اور ان کے خدائی میں شریک ہونے کی، اور دوسری طرف اللہ اپنے محاسبے سے اور حساب کتاب سے ان کو ڈرا رہا ہے کہ لوگوں اس دن سے ڈرو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے. ایمان جو ہے جاننا ماننا اور اقرار، کہ کسی چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، اس کا نام ہے. تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، تو ان کی اطاعت کرنی تھی، ان کو خدائی میں شریک تو نہیں کرنا تھا. جیسے آج مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نور ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، محفل میں آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمان و زمین کا نور، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے بندے تھے، عبد. تو ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرنا سے مراد کیا ہے؟ کہ پھر شرک نہیں کرنا، رسول کو خدائی کا مقام نہیں دینا. نمبر دو، عمل کا اصول کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت نساء کا اینڈ ہے، تو سورت نساء کے اندر جتنے احکامات ہیں ان پہ عمل کیا جائے. تو عمل صالح میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کہ ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، کہ زندگی میں غلو بھی نہیں کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، رسول کی اطاعت کی، پھر رسول کو جو ہے وہ خدائی میں شامل نہیں کیا، توحید پرست بن کر جنہوں نے زندگی بسر کی، تو انہیں کیا ملے گا؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کے ساتھ وفا کی جائے گی. وفا کرنا پورا پورا بدلہ دینا. اجورہم، اپنے اجر، تو وہ اپنے اجر پورے پورے پائیں گے. اللہ رب العزت ان کو پورا پورا ثواب جو ہے وہ عطا کریں گے. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر بھی عطا کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں اپنے فضل سے ان کو مزید اجر جو ہے وہ عطا کریں گے. اس کے یہ معنی ہے کہ ایک طرف تو ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ مزید بھی ان کو اپنے فضل سے دیں گے. جیسے کوئی جو آدمی ہے وہ اپنے نوکر کی نوکری سے یا اس کی مزدوری سے خوش ہو کر اس کو بونس دے. ایک تو تین ہے تنخواہ جو، اور یہ ہے ایک یہ ہے کہ تنخواہ سے بھی بڑھ کر جو ہے ان کو عطا کیا جائے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح لانے والوں کو اللہ جو ہے وہ اپنے فضل سے اور زیادہ اجر عطا کرے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا. اسْتَنْكَفُوا کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے عبد بننے سے شرم محسوس کی. کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ انسانیت کی معراج کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا بندہ ہے. اور بعض لوگ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، اور یا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ خدائی میں شامل کر لیا جائے، اور دنیا میں فرعون اور حامان بن کر جینا چاہتے ہیں، نمرود بن کر جینا چاہتے ہیں، یا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا انکار کر کے اللہ کی بندگی کا اور اطاعت کا تکبر کرتے ہیں، اور دوسروں کو اللہ کی خدائی میں جو ہے وہ شریک کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں سورۃ المومن آیت 60 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، बेशक जो लोग मेरी इबादत से इस्तकबार करते हैं, तकबुर की वजह से इनकार करते हैं, यकीनन जलील और ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि रहे वो लोग जिन्होंने बंदगी का इनकार किया, इस तनकफू जैसे बंदगी को अपने ऊपर से हटाया, शिर्क किया। और इस तन के फू जो है, इस तन का फू के फिर क्या मानी है, जिन्होंने आर समझा, वैसे नंगोआर या शर्म महसूस की, बस तकबरू और किब्र किया। और किब्र करना भी क्या होता है कि जो है वो हक का इनकार करना और अपने आप को बड़ा समझना, और उन्होंने किब्र किया। फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देगा, ऐसी सजा देगा जो बड़ी ही दर्दनाक सजा होगी। तो आप देख लें कि दुनिया में भी जो फिरौन बनकर दिया, हामून फिरौन, हामान, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, तो उनका क्या अंजाम हुआ। तो आखिरत में भी अल्लाह उनको दर्दनाक सजा देगा। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलीयन वला नसीरा, और नहीं वो पाएंगे, वजदा यजिदू होता है पाना, वला यजिदूना और नहीं उनको मिलेगा, नहीं वो पाएंगे, लहुम मिन दूनिल्लाहि अल्लाह को छोड़कर। और दूना का लफ्ज ज़विल अज़दाद में से है, ऊपर नीचे आगे पीछे इलावा के मानी भी देता है, तो अल्लाह के इलावा, अल्लाह के सिवा कोई उनका ना तो वली होगा, वलीयन दोस्त, वला नसीरा और ना ही कोई मददगार होगा। तो लोगों वो बड़ा ही दर्दनाक दिन होगा, वो बड़ा ही सख्त दिन होगा, और उस दिन जो है अल्लाह के सिवा कोई उनका जो है हामी और मददगार नहीं होगा, कोई उनका हमायती नहीं होगा, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होगा। जैसे दुनिया में लोग कुफर करते हैं, शिर्क करते हैं और अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, लेकिन उस दिन वो अल्लाह की सरहदों से, अल्लाह की पकड़ से भाग नहीं सकते। हशर होगा, हर तरफ से हर एक को जमा किया जाएगा, अल्लाह की हुदूद से निकल कर वो कहीं नहीं जा सकते। तो हिसाब किताब का दिन होगा। ये बड़ी सख्त आयत है कि जो है वो जो शिर्क करने वाले हैं, दुनिया में तो उन्होंने अपना बहुत से लोगों को दोस्त बनाया, माबूद बनाया, अब वहां पे कोई उनका मददगार नहीं है, ना उनके वली, ना उनके पीर, ना उनके दोस्त, और जिनकी वो सारी जिंदगी पूजा करते रहे, अब कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो, क़द जाअकुम, तहकीक आ गई। और अगर आता ना जाअकुम तो आया, और अगर कद साथ आ जाए तो माजी करीब के मानी पैदा हो जाते हैं कि आ गई है, क्या चीज आई है, बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान। और बुरहान जो है इसके क्या मानी है, आप देखें कि बाज लोग बुरहान का नाम भी रखते हैं, तो बाराहा इसका रूट है, इसके मानी होते हैं दलील और हुज्जत के, इसके मानी जो है वो सफेद और चमकने के भी होते हैं। और अरबी जबान में जैसे कोई सफेद रंग है, बहुत ही कोई खूबसूरत है, तो उसके लिए बुरहुन भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बरहतुन। तो बुरहान कहते हैं ऐसी दलील को, ऐसी दलील को जो दलाइल से जोरदार हो, हर हाल में हमेशा सच्ची हो। जैसे बुरहान, बुरहान को दलील काते भी कहते हैं, पीछे भी आप सूरत अल बकरा आयत 111 में पढ़ चुकी, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो ऐसी दलील पेश करो जो दलील रोशन हो, जो बिल्कुल सच्ची हो, जोरदार हो, कि उसके बाद जो है लोग चुप करके रह जाए। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू जरा मगरिब से निकाल के दिखा, पा बोहेता, फिर वो उस पर शशदर रह गया, उसको इस आपकी दलील का, बुरहान का कोई जवाब ना दे सका, हालांकि उसने खुदाई का दावा किया हुआ था। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास जो है वो बुरहान आ गई है, और ऐसी हुज्जत आ चुकी है कि अब उनके पास ना कोई उजर है, ना कोई बहाना है, उनके तमाम शुबहात जो है वो दूर हो चुके हैं। और ये बुरहान क्या है, ये बुरहान क्या है? मुफस्सरीन कहते हैं कि बुरहान से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वानजलना इलैकुम, और नाजिल किया तुम्हारी तरफ नूर मुबीना, जो है वो नूर रोशन, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नूर रोशन जो है वो नाजिल किया है। तो नूर रोशन से मुराद मुफस्सरीन कहते हैं कुरान मजीद, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद तुम्हारी तरफ जो है वो नाजिल किया है। क्योंकि कुरान को अल्लाह ने नूर कहा, इस सिलसिले में हमें सूरत माईदा की भी आयत मिलती है, आयत नंबर 15, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, तो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी आई है, एक नूर आया है, और रोशनी भी कैसी? मुबीना, वाजे है। तो कुरान मजीद क्या है? ये नूर मुबीना है, नूर मुबीना, वाजे रोशनी। और इस वाजे रोशनी का कैसे पता चलता है? कि ये जो है लोगों को सीधा सीधा रास्ता दिखाती है कि ये है सिराते मुस्तकीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, फमल्लज़ीना आमनू, पस रहे वो लोग जो इस पर ईमान लाए। किस किस पर ईमान लाए? पहले आपने पढ़ा अल्लाह पर ईमान लाना तौहीद परस्त बनना, फिर आपने पढ़ा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुरहान बनाकर भेजा, और आपका किरदार ऐसा था कि अहले मक्का भी आपको अमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे, आपके पास अपनी ईमानते रखते थे। और एक मौके पर कुरान ने उनका ये कौल नकल किया कि ऐ मोहम्मद, हम आपको झूठा नहीं कहते। तो कैसी बात है कि कहते हैं कि मोहम्मद झूठा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपका किरदार बुरहान था। फिर तीसरी बात, कुरान मजीद जो कि नूर मुबीना है, तो बस रहे वो लोग जो ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, हुआ कसमु बिही, और जो है वो अल्लाह पर ईमान लाने के साथ ही उन्होंने इसको जो है वो मजबूत पकड़ा है। किसको? अल्लाह के नबी की सुन्नत को, अल्लाह की जात को, तौहीद परस्त बने, अल्लाह की नबी की सुन्नत पर अमल किया, और कुरान को और मजबूती से पकड़ लिया। पीछे भी पढ़ा ना आपने, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने से मुराद दीन इस्लाम को पकड़ना है। तो वातसिमु बिही, और जो इसको मजबूती से पकड़ लेंगे, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फज्ल, बस अनकरीब अल्लाह जो है उसको अपनी रहमत में दाखिल करेगा और अपने फजल के दामन में ले लेगा। तो फसयुद खिलू, अनकरीब उनको दाखिल करेगा, ईमान और अमले सवाले लाने वालों को, कहां पे? फी रहमत मिनू, अपनी तरफ से रहमत में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ऐसे नेक लोगों को अपनी रहमत में दाखिल करेंगे। मुफस्सरीन कहते हैं रहमत से मुराद जन्नत है, कि उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। वह फजल, और फजल से मुराद क्या है? कि जब उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे तो मजीद नेमतों से नवाजेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनको बहुत सी नेमतों से जो है वो नवाजेंगे, अपने फजल के अंदर उनको जो है वो ले लेंगे। वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता फिर अल्लाह उनको जो है वो दिखाएगा। तो जन्नत है जो कि अल्लाह की रहमत है, फजल कि जन्नत में दाखिल होने के बाद मजीद अल्लाह की नेमतें, और मुफस्सरीन कहते हैं कि फजल से मुराद जो मजीद नेमतें हैं जन्नत में, सभी नेमतें हैं, तो अल्लाह का दीदार है, दीदार इलाही। क्योंकि जब अल्लाह अपना दीदार लोगों को कराएगा तो उसे जन्नत की नेमतों की तकमील हो जाएगी। तो अल्लाह अपने इस फजल से उनको नवाजेगा और उनको अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता जो है बताएगा। और अल्लाह की तरफ जाने का सीधा रास्ता कौन सा है? यह है कुरान मजीद का रास्ता, यह है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत का रास्ता। तो कुफर और शिर्क की तारीकियों से वो निकलेंगे, हदायत के नूर पर चलेंगे, गुमराही की पगडंडियों को छोड़ेंगे, और सिराते मुस्तकीम जो कि सीधा रास्ता है, हबलुम मिनल्लाहिल मतीन, जो कि जो है वो सिराते मुस्तकीम है, अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद दीन इस्लाम, तो इसकी तरफ उनकी रहनुमाई की जाएगी। वह यहदी ही मिले ही, उनको रहनुमाई की जाएगी सिरात मुस्तकीमा, सिरात मुस्तकीमा से मेरा सीधा रास्ता दीन इस्लाम है। फिर आप देखें कि सूरत अन्निसा जो है इसका इख्तिताम है, आखिरी आयत है, और सूरत अन्निसा में विरासत का कानून बड़ी तफसील से बयान किया गया है और इस आयत का जो निचोड़ है ये भी विरासत के कानून की जो है वो तकमील है। विरासत के कानून के बारे में जो लोगों के दिल में सवाल पैदा हुआ था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जवाब दिया है। यस्तफ्तूनक, लोग आपसे फतवा पूछते हैं। का की ज़मीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आई है और ये जो फतवा है ये किस चीज के बारे में फतवा था जो लोगों ने पूछा। कहा कि कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, बेशक अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में। और कलाला लफ्ज जो है आप पढ़ ही चुकी हैं कि कलाला किसे कहते हैं, ऐसे मरने वाले को कहा जाता है कलाला जिसका बाप ना हो बेटा ना हो। और बाज लोग कहते हैं कि कलाला वो शख्स है जिसका सिर्फ बेटा ना हो, बाप तो मौजूद हो, लेकिन सही तारीफ यही है कि बाप भी ना हो और बेटा भी ना हो। तो कलाला कौन है, जिसकी असल भी ना हो और फरा भी ना हो, तो ऐसे को जो है वो कलाला कहा जाता है। तो लोग आपसे कलाला के बारे में फतवा पूछते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में। निम्रोन, अगर एक आदमी है, एक शख्स है, लैसा लहू वलदुन, और उसकी कोई औलाद नहीं है, अगर ऐसा शख्स जिसकी औलाद नहीं है हलाका वो फौत हो जाए, वलहू उख्तुन और उसकी एक बहन हो, औलाद तो नहीं है और वैसे कलाला है तो उसका बाप भी नहीं है, है ना, ऊपर से वालदैन भी नहीं है, नीचे से औलाद भी नहीं है, अब क्या है कि एक बहन है, तो क्या होगा, वलहू उख्तुन और उसकी एक बहन है, फलाह निस्फ मा तरक, तो इसके तरके में से आधा पाएगी। तो जो उसने विरासत छोड़ी है तो उसमें से आधा जो है वो उसकी बहन को जो है वो दिया जाएगा, तो बाकी जो है वो जो रिश्तेदार है दूसरे उनमें जो है वो तकसीम किया जाएगा। और बहन से मुराद सगी बहन हो या अलाती हो या अखियाफी हो, जो भी बहन है तो उसको जो है वो आधा मिलेगा। फलाहा निस्फ मातरक, हा हा की जमीर बहन के लिए आई है। वाहुआ यारे सुहा, और वो जो है इसका वारिस होगा। वाहुआ हुआ की जमीर जो है वो मर्द के लिए आई है कि वो वारिस होगा, यरिसुहा इसका, हा की जमीर औरत के लिए आई है, तो वो उसका जो भाई है ना वो इसका वारिस बनेगा। किस सूरत में, अगर बहन कलाला मरती है, अब यहां पे कोई तफसील नहीं है, बस यहीं से शुरू कर दिया, वाहुआ और इसका भाई यरिसुहा इसका वारिस बनेगा। हा की जमीर बता रही है कि औरत मरने वाली है, वो कलाला है। इल्लम यकुन, अगर वो नहीं रखती लहा इसके लिए वलत औलाद, अगर जो बहन है ये बे औलाद मर रही है, कलाला है, इसका वालदैन भी नहीं है और नीचे औलाद भी नहीं है, तो इसका भाई जो है वो इसका वारिस बनेगा। तो भाई कैसे वारिस बनेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई पूरे माल का वारिस होगा अगर कोई और जवील फरूज नहीं है, और अगर उस जवील फरूज मौजूद है तो शोहर वगैरह जैसे अगर है तो इसका हिस्सा अदा करने के बाद बाकी तमाम जो है ना भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वालदैन भी नहीं है और औलाद भी नहीं है, शोहर मौजूद है तो शोहर को उसका हिस्सा मिलेगा और बाकी जो है इसको मिल जाएगा। अच्छा, अगर तो जो है वो एक से ज्यादा बहने हैं, फाइन कैन तस नतैन, अगर मैयत की वारिस दो बहने हों, इस नतैन ये दो के लिए आता है ना, अगर दो बहने हों, फलाहुमा सुलुसानी मिम्मा तरक, तो तरके में से दो तिहाई की हकदार होंगी। तो अगर मैयत की वारिस दो बहने हैं तो वो तरके में से टू थर्ड की हकदार होंगी। सुलुस नहीं कहा, सुलुसान कहा है, तो सुलुसान के मानी क्या है, दो तिहाई की हकदार होंगी। अच्छा, अगर मैयत की बहनें दो से ज्यादा हो तो फिर यही हुक्म उनके लिए है कि वो दो तिहाई जो है ना दो से ज्यादा बहनों में बांट दिया जाएगा, दो हो या दो से ज्यादा। वाइन कानू इख्वतन रिजाल व निसाअन, तो अगर हो बहन भाई, रिजालन मर्द भी व निसान और औरतें भी, तो अगर कई भाई बहन हो, मर्द भाई हैं और औरतें हैं जैसे बहनें हैं, तो कई भाई बहन हैं। फिर क्या है, फलिस जकरी मिसलु हज़्ज़िल उनसयैन, तो मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। फलिस जकरी तो फिर मर्दों के लिए है, मिसलु हज़्ज़िल उनसयैन औरतों से दुगना, तो उनसे उनसयैन आ गया, उनसे ही होता है ना जैसे, तो उसका उनसा ये दुगना, दो 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 हो गया ना, तो औरतों का कहरा और मर्दों का जो है वो दोहरा हिस्सा होगा। तो हज़्ज़िल उनसा ये के माने क्या है कि जो औरतों का हिस्सा है मर्दों का हिस्सा जो है वो उससे डबल होगा, क्योंकि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो उनसा यईन का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया, तो मिसल दो औरतों के, हज़्ज़ी हिस्सा है उनसा यईन दो औरतों के, दो मुअन्नस के बराबर जो है वो मर्दों का हिस्सा होगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, ये सारी वजाहत अल्लाह ने इसलिए की है ताकि तुम भटक ना जाओ, तुम गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। तो अब यहाँ पर जो है आप देख लें कि कलाला के बारे में लोगों के जहन में सवाल पैदा हुआ था, क्योंकि बाकी विरासत की तकसीम पिछली आयात में आप पढ़ चुकी, तो अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो कलाला की वजाहत कर दी, और कलाला के वारिस जो हैं अगर मर्द और औरत दोनों ही हैं तो फिर एक मर्द दो औरतों के बराबर का जो उसूल है उस पर विरसे की जो है वो तकसीम होगी। तो मानी ये है कि अगर तो उसका एक ही भाई है उसकी तफसील आपने अलग पढ़ ली, अगर एक ही बहन है उसकी तफसील आपने पहले पढ़ ली, अगर एक बहन से बढ़कर दो बहनें हैं तो टू थर्ड उसको मिलेगा, अगर टू दो बहनों से ज्यादा हैं तो टू थर्ड सब बहनों में तकसीम कर दिया जाएगा, अगर बहनें भी ज्यादा हैं और भाई भी ज्यादा हैं फिर ये जो पहले उसूल आपने पढ़े हैं इस पर नहीं तकसीम होगी, फिर जो है इस तरह तकसीम होगी वो जो पीछे आपने पढ़ा था कि मर्द का हिस्सा औरतों की निस्बत लड़की की निस्बत दुगना होता है, तो इस पर बहन भाइयों में जो है वो तकसीम हो जाएगी। समझ आएगी सबको बात की। और आयत का आखिरी हिस्सा बड़ा ही खूबसूरत है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है, तो विरासत का कानून अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि क्या होना चाहिए था, और बाकी जिंदगी गुजारने का तरीका सिराते मुस्तकीम ये भी अल्लाह खूब जानता है कि क्या होना चाहिए। तो मुसलमानों को इस बात पर ईमान लाना चाहिए कि अल्लाह ने अलीम ने जो हमें कुरान दिया है और कुरान मजीद जो हमें नाजिल किया है नाजिल कर दिया और जिंदगी गुजारने के जो तौर तरीके बताए हैं तो हमें उनको मजबूती से पकड़कर और ये समझना चाहिए कि वो खूब इल्म रखने वाला है और उसके फैसले सारे हिकमत और मबनी हैं। बात विरासत के कानून की हो, बात मर्द को एक दर्जा जो है वो ज्यादा देने की हो, बात जो है वो पानी ना मिले तो तयम्मुम करने की हो, और बात जो है कि तुम जो है वो अगर कोई कत्ले खता हो जाता है तो तुम कफारा अदा करो, या फिर ये कि सोबत सवाले अख्तियार करो और कितनी अच्छी है ये दोस्ती, या फिर बात अमीर की अताक की हो, या फिर बात जो है वो इस बात की हो कि लौंडियों से निकाह की, मतलब लौंडियां जो है हालांकि उनसे निकाह की वो है, उनसे उस तरह निकाह नहीं होता जैसे एक आजाद औरत से होता है। तो जो भी अल्लाह ने कानून बनाया तो कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुभात नहीं दिलों में पैदा होना चाहिए, तो अल्लाह के फैसलों पर अपने आप को राजी करना चाहिए। रदी तो बिल्ला रब्बा बिल इस्लाम दीन वबी मोहम्मद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये थी सूरत निसा जो हमें विरासत की तकसीम, यतीमों के हुकूक, बेवा औरतों के साथ कैसे हम हुस्ने सुलूक करें, जो हमें सलाते खौफ का तरीका बताती है, जो हमें हर सूरत में बताती है नमाज पढ़नी है, पानी नहीं मिले तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ो लेकिन नमाज को छोड़ना नहीं है, जो हमें जो है वो ये भी बताती है कि बहसियत एक मुसलमान के अपनी जिंदगी के हर पहलू में कुरान को इस्लाम को जो है वो नाफिज करना है, हमें तौबा का तरीका भी बताती है कि तौबा फौरी तौर पर की जाती है और अपने सारे गुनाहों से की जाती है, और अगर शोहर जो है वो एक की बजाय जो है वो ज्यादा शादियां करता है, कितनी शादियां, चार तक की इस्लाम उसको इजाजत देता है, तो उस पे भी जो है वो नाराज नहीं हो सकते कि अल्लाह ने मर्द को ये हक दिया है। وہ کہ اس کو اس کے ساتھ ہی مشروط کہا ہے شرط ٹھہرائی کے عدل کرنا، تو عدل اس کو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. اور سورت نساء پر آپ کا کوئز ہے اور اس میں آن لائن اور لائیو کی بہنوں کے گروپ بنا دیے گئے ہیں، اور آپ اپنے اپنے اسراجات میں ٹیم ورک کی شکل میں آپ تیاری کریں، اور سورت نساء پوری کی پوری سورت نساء کا امتحان جو ہے وہ کوئز کی شکل میں ہوگا، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.